श्री साई राम साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री साराम। आत्मा की यात्रा परमात्मा तक की है। वहां पहुंचने के लिए हम तीर्थ करते हैं, हम व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कर्म करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, मंदिरों में जाके माथा टेकते हैं, परमात्मा के आगे खड़े होकर हाथ को फैलाकर मांगते हैं। कभी आपने विचार किया हमारी आत्मा परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं कर पाती? बीच में कोई तो बाधा है, कोई तो ऐसी चीज है जो हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। कभी आपने सोचा कि तीर्थ करना कितना आसान है? आप गंगोत्री तक पहुंच जाएं, गोमुख तक पहुंच जाएं, यमुनोत्री तक पहुंच जाएं, गंगा यमुना में स्नान कर लें, सारे धामों की यात्रा कर लें, सारे पवित्र स्थलों में जाके माथा टेक के आ जाएं, दरिद्रों को गरीबों को भोजन करवाएं, दान दें, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक मास या नित्य आप दान करते रहें, शास्त्रों को अध्ययन करें, शास्त्रों को पढ़ते रहें, रामायण को पढ़ें, गीता को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, भूखे रहें, व्रत रखें, शरीर को तकलीफ दें, एक पांव पे खड़े होकर तपस्या कर लें ताकि आप, लेकिन फिर भी परमात्मा तक हम नहीं पहुंच पाते। कभी रत्ती भर के लिए विचार करना, इतना पुरुषार्थ करने के पश्चात भी हम वहीं के वहीं क्यों खड़े हैं? जरा सोचिएगा, जब हम कहते हैं हमने ज्ञान प्राप्त किया, क्या ज्ञान प्राप्त किया? शास्त्रों को पढ़ा, उनके अर्थ को समझा, रट लिया, बस, क्या ये ज्ञान है? व्रत रखते हैं, क्या करते हैं हम लोग? भूखे रहते हैं, या तो भूखे रहते हैं उससे बीमारी आती है, या हम ज्यादा खा लेते हैं ओवर ईटिंग, उससे भी बीमारी आती है। शरीर को तकलीफ दे के परमात्मा तक पहुंच जाएंगे क्या? विचार कीजिएगा। तीर्थ, गंगा में जाके ये माना जाता है गंगा में नहाने से आपके पाप धुल जाते हैं, फिर आपके पाप समाप्त क्यों नहीं हुए? कितनी बार गंगा में आपने स्नान किया? गंगा की एक बूंद भी आपके जन्म जन्मांतरों के पापों को माफ कर सकती है, लेकिन हमारे पाप माफ क्यों नहीं हो रहे? भगवत गीता के शास्त्रों के साथ शो श्लोक तो क्या एक श्लोक भी पकड़ लें वह आपकी नैया को पार कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं पार हुए अभी तक? हम रामायण का पाठ किया, कितनी बार किया हमने, कितनी बार सुनी, कितने सत्संग में गए हम लोग, लेकिन फिर भी कोई तो ऐसी बाधा है जो हमको रोक देती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी दिशा ही गलत है, हमारी डायरेक्शन ही गलत है। हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, वहां जाने के लिए जो हम माध्यम ढूंढ रहे हैं, जो हम साधन ढूंढ रहे हैं, जो हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई गलती है, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, कहीं ना कहीं कोई खामी है। विचार करना है आपको। आप क्या इस बात को जानते हैं हमारे भीतर छह प्रकार के शत्रु वास करते हैं काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या काम का अर्थ है डिजायर्स और सेक्सुअल अर्जेस क्रोध का अर्थ है एंगर लोभ का अर्थ है ग्रीड मोह का अर्थ है अटैचमेंट मद का अर्थ है प्राइड मत्सर का अर्थ है ईर्ष्या जेलसी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कभी हमने ऐसा किया है कि अपने भीतर झांक के देखा हो कि इन शत्रुओं में से सबसे प्रबल शत्रु कौन सा है विचार कीजिएगा शास्त्र कहते हैं जरा एक पल से सोचिएगा आप क्रोध आता है क्या करते हैं बहुत से लोग बोलते हैं पंडित जी हमें गुस्सा बहुत आता है क्रोध बहुत आता है क्या करें पंडित जी बोलेंगे बेटा पानी पी लो बेटा मून स्टोन धारण कर लो मोती पहन लो पर्ल पहन लो चांदी के बर्तन में पानी पिया करो उससे आपके अंदर शांति आएगी चांदी के आभूषण पहन लो सिल्वर ज्वेलरी पहन लो उससे ठंडक आएगी इस बात को हम भूल जाते हैं कि ये ठंडक शरीर की नहीं है मन को चाहिए ठंडक मन में क्रोध है क्रोध का कारण क्या है कभी आपने इसको खोजा आपने क्रोध का केवल एक ही कारण है पहले क्रोध के शब्द को समझिए आग बबूला होना फ्यूमिंग गेटिंग हीटेड अप मेरे तन बदन में आग लग गई मैं बिलक उठा फायरी ये सारे शब्द क्रोध को लेकर हैं अग्नि को लेकर हैं अग्नि जलाती है अर्थात क्रोध जलाता है किसको जो आदमी क्रोधित हो उसको अचानक एक बात याद आ रही है भगवान बाबा ने एक बार कहा था एक मिनट का क्रोध वन मोमेंट ऑफ एंगर जला देता है 6 महीने की भक्ति एक पल का क्रोध 6 महीने की भक्ति को भस्म कर देता है वन मोमेंट ऑफ एंगर डिस्ट्रॉय द भक्ति डिवोशन ऑफ 6 months अगर आपने एक साल में 2 मिनट 2 पल क्रोध कर लिया तो इसका मतलब यह हुआ एक साल की जो आपकी भक्ति है जो तपस्या है वो जल के राख हो गई तभी आपने सोचा इतनी तपस्या इतनी पूजा इतनी आराधना इतनी साधना करने के पश्चात भी आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे क्रोध का मूल कारण द रूट कॉज ऑफ एंगर वो है काम डिजायर तो कहा गया आंतरिक शत्रुओं में से सबसे पहले आप काम को कंट्रोल में करें डिजायर को पकड़ें किस प्रकार के डिजायर परमात्मा को पाने की इच्छा भी एक इच्छा है इच्छा सात्विक वो लेकिन है तब भी इच्छा विचार कीजिएगा बाकी जो दुश्मन हैं जो शत्रु हैं पहला है काम दूसरा है क्रोध लो मोह मद मत्सर ये सारे काम को छोड़ के 5 के 5 शत्रु काम की परछाइयां हैं शेडोज हैं। तो हमें क्या करना है, पहले अपने भीतर की बीमारी को पकड़ना है। यू हैव टू डायग्नोज द डिजीज बिफोर यू स्टार्ट ट्रीटिंग इट। ट्रीटमेंट से पहले, इलाज से पहले आपको बीमारी पकड़नी है। अगर ये बात समझ में आ जाती है मेरे भीतर की बीमारी काम है, डिजायर है, इच्छा है, देन यू हैव टू वर्क टूवर्ड इट। तब आपको कुछ ऐसे साधना के प्लान बनाने होंगे, प्लानिंग करनी होगी कि मैं किस प्रकार से अपनी इस शॉर्ट फॉलिंग को, अपने चैलेंजेस को, अपनी चुनौतियों को दूर करूं। बड़ा मुश्किल है ये, लेकिन लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे शास्त्रों का ज्ञान जो है, जिसे हम ज्ञान बोलते हैं, जो हम समझते हैं, जिनके हम अर्थ निकालते हैं, उनका तात्पर्य केवल एक है। उनका तात्पर्य है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर परिवर्तन लेके आना। विचार कीजिएगा, अपने अंदर परिवर्तन लेके आना। आप कहते हैं मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, मेरे अंदर क्रोध नहीं है, मेरे अंदर कोई वासना नहीं है, मोह नहीं है, और आप बाजार में घूमने गए, आपने सामने एक नई वस्तु देखी, नया मॉडल देखा, कोई मन में इच्छा आ गई, क्षण भर के लिए आई हो, इच्छा तो आई, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये चाहिए, आप काम की बात करते हैं। भगवान ने आपको बहुत रूपवान पत्नी दी है, आपकी पत्नी रूपवान है, रूपमती है, गुणवती है, गुणों से भरी हुई है, सुशील है, दुनिया के सारे गुण उसके भीतर हैं, घर में भी काम करती है, ऑफिस में भी काम करती है, गृह लक्ष्मी भी है, ऑफिस लक्ष्मी भी है, घर में भी काम करती है, बाहर से पैसे कमा के भी लाती है, आपको खाना भी बना के खिलाती है, आपके बच्चों को पाल पोस के बड़ा भी करती है, आपकी डांट फटकार भी सुनती है, और फिर भी आप पर ख्याल रखती है। और कमाल की बात तो यह है, फिर भी आपको लगता है कि दूसरे व्यक्ति की पत्नी आपकी पत्नी से कहीं बेहतर है। Why is that? ऐसी भावना क्यों आती है? और ये वक्तत्व, ये स्टेटमेंट स्त्रियों के लिए भी है, बहनों के लिए भी है, खाली पुरुषों के, भाइयों के लिए नहीं। इसका मतलब हमारे अंदर कोई ऐसी वासना है जो तृप्त नहीं हो रही है। और ध्यान रहे, कोई भी वासना कदापि तृप्त नहीं हो सकती। The nature of the desire is to ask for more। इच्छा की प्रवृत्ति है, इच्छा का नेचर है, कामनाओं का नेचर है, वो आपसे और मांगे, और मांगे। पूरी उम्र गुजर जाती है, पूरी उम्र गुजर जाती है। जरा सोचे, अचानक बात याद आ गई, एक चील थी, ईगल थी, एक मरे हुए चूहे को लेकर चोंच में दबा के आकाश में उड़ रही थी। बाकी चीलों ने देखा कि इस चील के मुंह में चूहा है, सब चीलें उस चील के पीछे भागी, उस चील को अपने चोंच से खूब मारा, लोलान कर दिया। दर्द में कराते हुए उस चील ने मरे हुए चूहे को छोड़ दिया। जैसे ही मरा हुआ चूहा जमीन पर गिरा, बाकी सारी चीलें उड़ के वहां से भाग गई। जब चील ने सोचा, मैं तो ये सोचती थी कि सारे मेरे शत्रु हैं, मेरे पे आक्रमण कर रहे हैं, मुझ पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो चूहा चाहते थे, वो भी मरा हुआ। क्या मतलब हुआ? इसी प्रकार से हमने अपने मुख में एक मरे हुए चूहे को अर्थात एक कामना को डिजायर को पकड़ा हुआ है और जब तक हम डिजायर को पकड़ के आगे बढ़ते रहेंगे हमारे ऊपर आक्रमण होता रहेगा और जिस दिन हम उसको त्याग देंगे छोड़ देंगे सारे आक्रमण करने वाले पीछे हट जाएंगे। कभी आपने सोचा आप किसी संस्था में हैं ऑर्गेनाइजेशन में हैं किसी सोसाइटी में हैं बड़े प्रेम से रह रहे हैं लेकिन जिस दिन आपको कोई हाई पोजीशन मिल गई अच्छा पद मिल गया आपका शत्रु बढ़ गया वही मित्र जो कल मित्र थे आज शत्रु बन गए क्यों उनको लगता है ये काम तो मैं भी कर सकता था उसको मौका क्यों दिया इसे कहा जाता है ईर्ष्या जेलेसी। आप ऑफिस में काम करते हैं आपको प्रमोशन हो गई आपको बोला गया भाई देखो आपको ये पोजीशन है आपको नई ब्रांड न्यू बीएमडब्ल्यू मिलने वाली है लेकिन अचानक ऑफिस में कुछ चेंजेस आ गए उन्होंने कहा सॉरी आपको गाड़ी नहीं मिलेगी इस बारी ये गाड़ी हम आपके आपके साथी को दे रहे हैं आप सोचेंगे आई डिजर्व इट उसे क्यों मिल रही है एकदम ईर्ष्या आ जाएगी। छोटी छोटी चीजें हैं ये जरा आप कल्पना करें हाउ आर वी गोइंग टू विन ओवर दीज एनिमीज दीज चैलेंजेस दीज शॉर्टफॉल्स ये हमारे अंतर के शत्रु हैं। कोई तो तरीका खोजना होगा ना आपको भी हम कैसे बाहर निकालें इसलिए हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि हम अपने अंदर में से अपने भीतर में से इस प्रकार के शत्रुओं को बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जब मन में इच्छा नहीं होगी तो आपका मन किसी और अट्रैक्ट नहीं होगा किसी और आकर्षित नहीं होगा मुंह में नहीं फंसेगा। जब क्रोध नहीं होगा जब क्रोध की वस्तु ही नहीं होगी तो क्रोध कहां से आएगा लोभ कहां से आएगा ईर्ष्या कहां से आएगी किस बात को लेके अहंकार होगा ये सारी चीजें जुड़ी हैं काम के साथ वासना के साथ डिजायर्स के साथ। जब आपके ये आंतरिक छह शत्रु आपके अंतर से बाहर निकल जाते हैं तब आपकी अंतर की यात्रा आरंभ होती है। द डे यू कॉन्कर द इनर एनिमीज काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर एक बार फिर से काम इज एंगर क्रोध इज माफ कीजिएगा काम इज डिजायर क्रोध इज एंगर मोह इज अटैचमेंट लोभ इज ग्रीव मद इज प्राइड मत्सर इज ईर्ष्या जेलसी। जब आप इन आंतरिक छह शत्रुओं को कॉन्कर कर लेते हैं उनके ऊपर जीत पा लेते हैं जीत लेते हैं योर इनर जर्नी बिगिंस। यहां से आपके अंतर की यात्रा आरंभ होगी फिर आप तीर्थ करने जाएं उसका आनंद ही और है फिर आप मंदिर में खड़े होकर भगवान के मूर्ति को भी देखेंगे उसका मजा ही अलग होगा कहीं अब राम के चरित्र की गाथा सुनेंगे अनंत भाव विभोर हो जाएंगे गीता का एक शब्द ही पढ़ेंगे उसका निचोड़ उसका रस आपके खून में आपके रक्त में बहने लग जाएगा। एक वर्ष रख लेंगे आपको लगेगा आपको परमात्मा सामने प्रकट हो गए हूं विचार कीजिएगा आइडेंटिफाई डायग्नोज द डिजीज फर्स्ट देन लुक फॉर ट्रीटमेंट पहले बीमारी को पकड़े फिर उसका इलाज करें। हम बीमारी को पकड़ने
की कोशिश भी नहीं करते। हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मैं बीमार हूं। कमाल की बात तो यह है, सर दर्द होता है तो दवाई खा लेते हैं, शरीर में पीड़ा होती है डॉक्टर को दिखा देते हैं, रेगुलर मेडिकल चेकअप करा लेते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर लेवल ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है, किडनी ठीक काम कर रही है, हार्ट ठीक काम कर रहा है, लंग ठीक काम कर रहे हैं। ओह व्हाट ए रिलीफ जब आपके सारे रिपोर्ट्स अच्छी आती हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं करते कि कह रहा है मेरा मन ठीक है, मेरे मन में जो शत्रु बसे हैं वो आज भी हैं जो कल थे। व्हाट हैव यू डन अबाउट इट? नथिंग एट ऑल। तो सोचिएगा, विचार कीजिएगा, अपने अंतर की बीमारी को आप अगर खुद पकड़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। और जब ये साधना बना के, साधना प्लान बना के कि मेरा ये साधना प्लान है, अगले 6 महीने में, अगले 8 महीने में, अगले 1 साल में मुझे इनके ऊपर जीतना है, इन शत्रुओं को मानना है, फिर देखिए आपको भगवान खोजना नहीं पड़ेगा, भगवान आपके सामने खड़ा हुआ मिलेगा। कोशिश कीजिए, फिर आगे बात करते हैं अगले सप्ताह। जय साईं राम।
अखंड मंडला पदं दर्शितं येन तस्मै श्री